समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 हो चुके हैं और समय है कार्यक्रम परिक्रमा का। और इसमें हम आपको बताएंगे देश विदेश के समाचार, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी। और आज ये भी जानेंगे किन महान लोगों ने आज के दिन को अलविदा कहा और किन की आज जयंती है। तो बहुत कुछ रहेगा आधे घंटे के इस अंक में। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। हेलो सायरा।
हेलो प्रियंका। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस दिस वेरी वेरी फेस्टिव एडिशन ऑफ परिक्रमा, बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑफ कोर्स टुडे इज डॉक्टर अम्बेडकर्स बर्थ एनिवर्सरी, सो द होल नेशन इज पेइंग ट्रिब्यूट टू हिम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी रीजन इन आवर कंट्री इज प्रोबब्ली सेलिब्रेटिंग सम काइंड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। And yes, of course, that, you know, a lot of that in the next half an hour. So first, let's start with the headlines.
बिल्कुल। राष्ट्र आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
Prime Minister Narendra Modi launches multiple projects in Haryana to mark Dr. Ambedkar's anniversary. Says every policy of government reflects Dr. Ambedkar's path of justice and inclusion.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है।
Fugitive diamond trader Mehul Choksi arrested in Belgium.
रूस ने भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रति समर्थन भी दोहराया।
एंड इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज वन, इंडिया धीरज बोमदेवरा बैग्स ब्रॉन्ज मेडल इन फ्लोरिडा यूएस। And yes, we start the show with the Dateline India, our special segment in which we take a look at the important events. And no other event is as important today as Dr. Ambedkar's birth anniversary. Yes, the nation is paying homage to Dr. Bhimrao Ambedkar on his 134th birth anniversary today. The day is also marked as Equality Day to honor his dedication to uplift marginalized communities, especially the Dalits, women and laborers who faced systemic social discrimination. A visionary reformer and tireless advocate of equality, Dr. Ambedkar recognized that caste oppression was fracturing the nation and he sought transformative measures to address these deep-rooted injustices.
बिल्कुल सायरा, देश के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का कथन था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया था।
That's right. In fact, that's why probably Priyanka, he is called the architect of the institution of the constitution, because, you know, as chairman of the constitution and drafting committee, he played a pivotal role in crafting the Indian constitution, presenting a draft in 1948 that was adopted in 1949 with minimal changes. His emphasis on equality and justice ensured provisions that protected the rights of the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes, laying the groundwork for an inclusive democracy. Dr. Ambedkar was posthumously awarded the Bharat Ratna by the Government of India in the year 1990.
समानता के लिए डॉक्टर आम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका थी। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में मदद की, जिसमें सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देने वाले मौलिक अधिकार थे। डॉक्टर आम्बेडकर समानता और तर्कसंगतता के आधार पर समाज को पुनर्गठित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सामाजिक संरचना पर आधारित जाति का विरोध किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज बनाने के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए और इस तरह के भेदभाव का शिकार होने के कारण उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपना जीवन देने का फैसला किया।
That's right, Priyanka. His profound intellect and vision influenced key economic and social frameworks, making him an essential force in shaping independent India's governance and development. His doctoral thesis inspired the establishment of the Finance Commission of India. At the same time, his ideas were instrumental in framing the guidelines for the Reserve Bank of India Act of 1934 and also influencing the creation of the Reserve Bank itself. He was one of the founders of employment exchanges in our country.
बिल्कुल, और उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण सहित उत्पीड़ितों को सशक्त बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम प्रस्तावित किए थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत और अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिताया। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने मूक नायक यानी खामोश लोगों का नेता अखबार शुरू किया। उन्होंने शिक्षा का प्रसार करने, आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत जाति कल्याण संघ की स्थापना की। उन्होंने हमेशा एकजुट भारत की कामना की।
That's right, and probably we will definitely live up to his expectations of having a unified India. Aur hamara desh bahut khoobsurat misal hai bhi uski. And Dr. Ambedkar's multifaceted contributions from economic policy and infrastructure to constitutional law cemented his legacy as a nation builder committed to fostering a just and equitable India. On his birth anniversary, we are reminded to uphold his ideals of justice, equality, and liberty, drawing inspiration from his life to continue the journey towards a more just and harmonious world.
बिल्कुल, उनके उपदेशों से और उन्होंने जो कार्य किया उससे हम हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। और उनका ये मानना था कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए और निसंदेह उनका जीवन इसकी मिसाल है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का।
That's right, and we start our journey of Parikrama from down south. Yes, the Clean Kerala Conclave, Ruthi 2025, was held in the capital city, Thiruvananthapuram, last week, aiming to promote new ideas and technologies in the field of waste management. Let's hear more from our correspondent.
Vritti 2025 was held from April 9 to 13. The conclave was organized by the local self-government department as part of the Malini Muktam Navakeralam campaign and coordinated by Shijitha Mission. The event focused on innovative solutions to tackle major challenges in solid and liquid waste management. Chief Minister Pinarayi Vijayan, while inaugurating the five-day conclave, said that Vritti 2025 will be a platform to address the concerns and doubts related to waste management in the state. He further said that Kerala has made significant progress in the field of waste management through collective efforts. The state local self-government minister MP Rajesh said that the state government's goal is to achieve 100% waste-free Kerala, and this requires collective action. The Vritti conclave featured exhibitions, model villages, food festivals and visually stunning installations with waste products. The conclave provided a platform for students, colleges, startups, officials, institutions and the general public to propose ideas and solutions. Awards were presented to districts excelling in waste management, with Kannur securing the first place, Kozhikode second and Thrissur third. A comprehensive report on the activities under the Waste Free New Kerala campaign was released by the Chief Minister, and the vision document outlining the future waste management was presented at the conclave's closing ceremony. Mayusha for Parikrama, Thiruvananthapuram.
बिल्कुल, कचरा प्रबंधन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और नई नई तकनीकी नवाचार जब प्रयास होते हैं तो कुछ अच्छा निकल के आता है। और उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्क्लेव हुआ है, जो सम्मेलन हुआ है, उसमें भी ऐसे ही फ्रूटफुल सार्थक चीजें निकलकर सामने आए। और हम जब टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रंगीन लगता है और नई नई चीजें ऐसे लगता है हमारे सामने, और एक क्लिक करते हैं सब कुछ हमारे सामने। कुछ चीजें हैं
आजकल तो इनफैक्ट एआई का दौर चल गया है
और मतलब जैसे मैं खुद कहूँ, जैसे हम किंडल लेते हैं पढ़ने के लिए किताबें, मतलब बहुत कुछ है हमारे पास, नई नई तकनीकें, लेकिन कुछ चीजें जब किताबों की बात आती है, जब तक वो हाथ में किताब ना ली जाए ना और हाथ में चाय का प्याला या कुछ हो, तो उसका मजा नहीं आता.
और किताबों की जो पन्नों की अलग खुशबू होती है, दैट वेनिला फ्रॉम द पेपर्स,
और उसमें फूल जब रखते थे, फूल की पत्तियां संभाल के रखते थे, वो भी एक अलग ही रोमांच था. लेकिन जैसे गुलजार की पंक्तियां और इस समय बहुत प्रासंगिक लग रही हैं. किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें.
बिल्कुल
बिल्कुल. और ये है, लेकिन समय समय पर प्रयास हो रहे हैं और ये जो पुस्तक मेले आयोजित हो रहे हैं, तो लोगों को एक तरह से आकर्षित किया जा रहा है कि आप पुस्तक पढ़ें. और इसी सिलसिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कला और संस्कृति विभाग की ओर से 10 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रकाशकों की लगभग 30,000 पुस्तकें प्रकाशित की गई. एक रिपोर्ट है, इस पर सुनते हैं.
पुस्तक प्रेमियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने के बावजूद पुस्तक मेले ने हमेशा से ही पढ़ने के अनूठे स्वाद वाले लोगों को आकर्षित किया है. पुस्तक प्रेमियों को विभिन्न लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने और सीखने के शौकीन स्कूली बच्चों के लिए द्वीप समूह में प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा अंडमान पुस्तक मेले का आयोजन किया गया. इस 10 दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी, छात्र, लेखक और प्रकाशक पहुंचे. पुस्तक मेले में लगभग 40 स्टॉल लगाए गए, जिसमें विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शित की गईं. इस पुस्तक मेले में न केवल सभी उम्र के पाठकों को लाभान्वित किया, बल्कि लेखकों को जनता से जोड़ने का अवसर भी प्रदान किया. मुख्य भूमि से आए प्रकाशकों ने द्वीप समूह के इस आयोजन पर खुशी जाहिर की. आज जहां किताबें हाथों के बजाय स्क्रीन पर समा गई हैं, वहीं इस पुस्तक मेले ने भारी संख्या में भीड़ को इकट्ठा कर दिखाया. मेले का उद्देश्य लोगों में पुस्तकों द्वारा संस्कृति को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था. श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित इस मेले में कई साहित्यिक गतिविधियां भी चलाई गईं, जिसने सभी आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया. इस पुस्तक मेले में कई रचनात्मक और साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसने बच्चों में किताबों के शौक को बढ़ाया. ऐसे पुस्तक मेलों के जरिए पुस्तकों का प्रचार प्रसार किया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए. ऐसे मेलों के माध्यम से पुस्तकों की लोकप्रियता तो बढ़ती ही है, साथ ही ऐसी किताबें भी सामने आती हैं जो भीड़ में कहीं खो सी जाती हैं. और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ ऐसे पुस्तक मेले के आयोजन से पुस्तक प्रेमियों को काफी लाभ मिलता है. परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से मैं पूजा सिंह.
एंड यस इंडीड प्रियंका, कि माना आजकल डिजिटल इंडिया का दौर है और एवरीबडी इज प्रॉब्ली रिलाइंग ऑन गैजेट्स, और किंडल का भी दौर चला है, बट सोचिए ना किताबों की एक अपनी कितना एक, जैसे आपने कहा, एक चार्म होता है, बिकॉज उसमें कोई रेडिएशन नहीं है. आफ्टर ऑल जो भी आप स्क्रीन लेंगे, कुछ तो उसमें से रेडिएशन होगा ही होगा.
और अपने साथ आप लगा के सो भी सकते हैं,
दैट्स व्हाट, विदाउट इवन यू नो बॉदरिंग अबाउट योर हेल्थ, अबाउट यू नो, दैट्स व्हाई आई सेड देयर इज नो रेडिएशन इन द बुक. सो प्लीज डियर लिसनर्स, डू नॉट गिव अप the habit of book reading. On that note, we also continue our journey of Parikrama to the northeast. We go now. The Nagaland government has launched the Nagaland Solar Mission, aimed at accelerating the adoption of residential rooftop solar power systems across the state. This initiative aligns with the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and seeks to make clean energy more accessible and affordable to households in the state. More from our Kohima correspondent.
Nagaland Chief Minister Nipyu Rio today launched the Nagaland Solar Mission at the Chief Minister's Office Secretariat in Kohima in the presence of Deputy Chief Minister Y. Patan, Minister for Power K. G. Kenye, Chief Secretary J. Alam and other senior state officials. Chief Minister Nipyu Rio said the initiative reflects the state government's commitment to building a sustainable and energy-efficient future. Under the scheme, the state government will supplement Government of India subsidy by providing additional state subsidies. Beneficiaries will receive up to 96% subsidy for a system up to 2 kilowatt and 85% for systems up to 3 kilowatt, making solar installation significantly more affordable for residents. And allocations of 10 crore rupees have been made for the mission in the financial year 2025-26. This marks a significant step towards advancing green energy, reducing electricity costs and promoting environmental conservation. For Parikrama, Asonyo, Kohima.
बिल्कुल, आप ये एक नई व्यवस्था है कि आप छतों पर अगर सोलर उपकरण लगाते हैं तो इससे आपको भी फायदा है, सरकार को भी फायदा और देश को भी फायदा है। तो अगर आपके पास छत है और खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं छत पर, तो ये जो नई व्यवस्था है इसका लाभ उठाएं। इसमें सब्सिडी भी मिलेगी सरकार की ओर से, आपका हित भी होगा और देश का हित भी होगा। और अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में। जी हाँ, ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी सीमा क्षेत्र मानी भंजियांग में सशस्त्र सीमा बल के 36वें बटालियन के कमांडेंट के निर्देशन में पिछले बृहस्पतिवार को एक दिवसीय प्रथम चिकित्सा उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। और इसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, कई लोगों को कौशल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर दिया गया। तो इस बारे में खास रिपोर्ट है हमारे संवाददाता अशोक चौरसिया की, आइए सुनते हैं।
इस शिविर में पर्यटक गाइडों तथा ऊंची पहाड़ी सड़कों पर चलने वाले सक्षम वाहन लैंड रोवर के चालकों को संकट के समय पर्यटकों की मदद हेतु प्रथम चिकित्सा उपचार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दार्जिलिंग में इस वर्ष का पर्यटन सीजन शुरू हो गया है तथा दार्जिलिंग पहाड़ में पर्यटकों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। विगत समय में ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में घूमने आने वाले पर्यटकों में सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी, शरीर में दर्द व अकड़न, उल्टी, सर्दी, जुकाम, पक्षाघात, रक्तचाप, बुखार आदि समस्याएं देखी गई। प्राथमिक चिकित्सा उपचार समय पर न मिलने की वजह से कई पर्यटकों की मृत्यु की खबरें भी प्रकाश में आई। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन से जुड़े उद्योग से संबंधित करीब 50 से अधिक लोगों को SSB ने प्रशिक्षण प्रदान किया। SSB के सहायक कमांडेंट चिकित्सक नीरज कुमार मिश्रा ने अपनी टीम के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया। स्मरण रहे, इस क्षेत्र में SSB सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को और सुगम बनाने हेतु सड़क व पुल निर्माण, कृषि विकास, कौशल प्रशिक्षण, गैर सरकारी संगठनों से मिलकर साहसिक अभियान, देशभक्ति कार्यक्रम आदि आयोजन करता है। हाल के समय सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटकों की गतिविधियां बढ़ने व खुली सीमा होने के कारण सुरक्षा चौकसी भी अहम हो गई है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी करशंग।
Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi was recently felicitated for distinguished ex-servicemen. He has recently felicitated four distinguished ex-servicemen with the Veteran Achievers Award for their outstanding contributions to the society, youth empowerment and nation building. The ex-servicemen were honored at a ceremony held at Vajrakor in Jalandhar, where the Army Chief interacted with other veterans as well. Our correspondent has more details.
It is being said that Faujis never retire or get tired. They keep on working in whatever manner for the unity and upliftment of the society and remain a source of inspiration for all. Such are these four who have been honored with the Veteran Achievers Award. They are Colonel Jagdeep Singh, a wheelchair-bound battle casualty himself. He has secured 76 crore rupees in dues for more than 1300 Veer Naris and veterans. Colonel Singh has also enabled jobs for 23 families of our brave hearts who have made the supreme sacrifice while protecting our borders so that we live peacefully. Commander Gurcharan Singh, a 1971 war hero, after serving the nation in uniform, he is now serving the community by resolving decade-old financial cases and securing lifelong Red Cross aid for the families of the brave hearts. Then we have Honorary Captain Gurmail Singh. He has resolved 100+ pension cases of the ex-servicemen and facilitated 60+ job placement. He has also empowered over 700 youth to join defense services. The fourth one honored is Havaldar Simranjit Singh. He is running a sports academy in Raikot, Ludhiana, where he is training rural youth for sports and giving coaching to join armed forces and paramilitary forces. His coaching to the youth has contributed with over 50 selections in the forces so far. As the saying goes, once a Fauji, always a Fauji. It signifies that a person's time in the Indian military or armed forces leaves a lasting impact in shaping his, her character and values. That's why they always work with a never-say-die spirit, even after leaving their active service. With a salute to these four and all other former and in-service soldiers, for Parikrama, Rajesh Bali, Jalandhar.
हमारा देश विविधता में ना एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसा देश, ऐसी संस्कृति, हर दिन त्योहार, जैसे आपने शुरुआत में भी किया था, और आज नव शुभ वर्षो है।
यस, शुभ नव वर्षो, यस द बंगाली न्यू ईयर, और पहला बैशाख इज यू नो विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो इन त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अक्रॉस द ग्लोब बाय द बंगाली कम्युनिटी। एंड द डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एक्सूबरेंस इन होम्स एंड कम्युनिटीज। द फेस्टिविटी बिगान फ्रॉम टुडे विद द चैत्र संक्रांति। एंड लेट्स हियर मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इन अगरतला।
Tripura is inhabited by 19 tribes and Bengali communities. The varied communities live here amid an ideal frame of cultural synthesis that is manifested in the current leap forward from Chaitra to Baisakh month. The Bengalese Gajan festival, glorified by the Shiva, begins on the last day of the Bengali calendar, and the folk cultural ritual culminates into the Charak Puja at the beginning of the new year. Bengali New Year is an important festival in Tripura, West Bengal, as well as for Bengalis all over the world. The festival marks the first day of the Bengali calendar, which usually falls on 14th or 15th April every year. The word Poila means first, and Boishakh is the first month of the Bengali calendar year. The history of Poila Boishakh began in the 16th century with a prayer for good harvest season. Though the urban culture has eroded many of traditional ethos across regions, on the occasion of Nova Barsho, the people in general invoke the call of tradition and heritage on this special occasion. Tomorrow, the day will begin, particularly in Agartala, with colorful processions and Manglik celebrations to mark the new year from early morning. Joyful mood, traditional attires and playing conch will be the main highlights of the day. Also, spectacular facet is the traders rushing to the temples on this day to open the new Halkhata or accounts book as per the religious rituals. The Biju festival of the Chakma community of Tripura has also started from the end of Chaitra. The Chakmas are worshippers of Lord Buddha. Biju is celebrated in the Chakma township by bathing the Buddha image and showering it with joy. Gariya Puja begins on the last day of the Bengali year-end, which has taken the form of a festival. Devotees from the Tripuri and Koloi tribal sections take part in the puja to wish for everyone's happiness, prosperity and well-being. Kunal Shinde for Parikrama, Akashwani News, Agartala.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तीरंदाजी में आज सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत के धीरज बोमन देवरा ने रजत पदक जीता। धीरज ने पुरुषों के निजी रिकर्व स्पर्धा में एंड्रेस टेमिनो मेडियल को 6-4 से हराया। ये इस प्रतियोगिता में धीरज का दूसरा पदक भी है। और
इन आईपीएल क्रिकेट, लखनऊ सुपर जॉयंट्स विल टेक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स एट एकाना क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ एट 7:30 PM।
और टेबल टेनिस में चीन के मकाऊ में महिला सिंगल्स वर्ग में भारतीय टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा और श्रीजा अकुला ने ITTF विश्व कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की।
And yes, now we come to that segment in which we remember some important personalities today.
Today, we remember the architect of the Constitution of India, Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar, who was born on 14th of April 1891 in Mau, Madhya Pradesh.
Young Ambedkar faced a lot of social discrimination while academically training himself, but he surpassed all of them. He prevailed against all the odds and completed a PhD in economics from Columbia University in New York City. He also secured a DSc in economics from the London School of Economics.
Being a victim of caste discrimination, which inspired him to work towards the cause, and with the help of the Maharaja of Kolhapur, he founded the weekly journal Mook Nayak. He also founded the Bahishkrit Hitkarini Sabha to provide education and socio-economic improvement to the backward class. Instead of taking the route of violence, he led a Satyagraha movement, fighting for the rights of so-called untouchables, Baba Saheb was nominated to Bombay Legislative Council in 1926.
In the Pune Pact in 1934, Baba Saheb reached an understanding with Gandhiji accordingly, where instead of a separate electorate, seats were reserved for depressed class legislative assemblies and the Central Council. In 1935, he was appointed as the principal of the Government Law College, and the following year he founded the Independent Labour Party, which went on to secure 14 seats in the 1937 Bombay elections when Dr. Ambedkar was also elected to Bombay Legislative Assembly.
In the same year, he published the famous book, The Annihilation of Caste. In 1942, Baba Saheb was nominated to the Governor General Executive Council. He was the only member in the council to handle four portfolios. In 1946, he became a member of the Constituent Assembly.
As the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, he aimed to bring about a social revolution in the country, freeing it from any sort of discrimination.
और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं.
Yes, we are starting with M. Vishveshwaraya. Yes, who was called the father of modern Mysore and jinke honor mein hum log Engineers Day bhi manate hain. A very prominent engineer, statesman and scholar. He served as the Diwan of Mysore from 1912 to 1918. His contributions to engineering and administration earned him the title of father of modern Mysore. He was also awarded the Bharat Ratna in the year 1955.
और आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन की. राहुल सांकृत्यायन का नाम जब भी याद आता है तो स्मृति में सबसे पहले आती है घुमक्कड़ी. उनकी एक पुस्तक का नाम भी है घुमक्कड़ शास्त्र. इसके अलावा भी उन्होंने कई पुस्तकें यात्रा और भ्रमण पर लिखी हैं. महापंडित कहे जाने वाले राहुल सांकृत्यायन वास्तव में यायावर थे. राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत, नेपाल, चीन, श्रीलंका, तत्कालीन सोवियत संघ समेत कई देशों का भ्रमण किया. उपन्यास, निबंध, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण और जीवनी आदि के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया. और मतलब कहा जाता है कि वे एक साधारण घुमक्कड़ नहीं थे जो किसी देश में जाकर वहां के भूगोल मात्र से प्रभावित हो ले. वे खच्चर पर किताबें लादकर तिब्बत से भारत ले आए थे. वे जहां जाते थे वहां की संस्कृति को भी आत्मसात करते थे. लगभग 30 भाषाएं जानते थे और 140 किताबों के लेखक थे. अद्भुत तर्कशास्त्री थे. समाज शास्त्र, दर्शन, इतिहास, अध्यात्म जैसे विषयों के ज्ञाता भी थे.
Today we are also remembering Ustad Ali Akbar Khan on his birth anniversary, a Hindustani classical exponent who is known for his virtuous sarod playing and he, of course, his innumerable contributions to the Meher Gharana. And he was a prolific teacher and composer known for his original rags and his dedication to making Indian classical music accessible to Western audiences.
और उन्हें भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. आइए सुनते हैं उनके वादन का एक झलक. आज के दिन जन्म हुआ था सिने जगत की जानी मानी शख्सियत शमशाद बेगम का. उनका हर एक गाना दिल को छू जाता है. और आपको पता है सारा, फिल्म रेल का डिब्बा का गीत लादे मोहे बालमा आसमानी चूड़ियां एक ऐसा गाना था जिसकी 14 पंक्तियां शमशाद ने एक ही सांस में गाई थी. और इस गीत में उनके साथी गायक मोहम्मद रफी थे. बिना किसी संगीत तालीम के शमशाद की गायकी और भावों की खूबसूरत अदायगी किसी करिश्मे से कम नहीं है.
नाद मोहे बालमा आसमान चूड़िया जी आसमान चूड़िया. तुम्हें छोड़ के बलम जाएंगे ना हम खाए हुए हैं प्यार की कसम. रोएगा ना दिल खाएंगे ना गम कोई ना होगा दिल पे सितम. तुम ही पिया तुम ही सनम रखना मेरी लाज शर्म. तेरे ही दम से है मेरा दम लागी हो देखो ना कम. लाज मिल के तुम समझम दे दे मुझे प्यार की तू निशान चूड़िया जी.
तो ये कह सकते हैं प्रियंका कि ट्रूली ब्रेथलेस अगर देखा जाए तो शमशाद बेगम थी।
और आज के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई नामी गिनामी नाम आते हैं हमारे दिमाग में, और इसमें मोहम्मद रफी ने भी ऐसी पंक्तियां गाई हैं, और उन्हें 2009 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। और उनके गाए गीत की और एक आवाज एक गीत सुनते हैं। आप से अनुमति ली जाए तो प्रियंका और सायरा को अनुमति दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।